राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा बन चरी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रजन रंजन यशोदानंदन ब्रजन रंजन यमुना तीरा बन यमुना तीरा बन चली। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। विष्णुपाद परमहंस परिव्राज कचारी अष्टोत्तर श्री श्रीमदिष्टवाइनग्रीस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रोफेसर कौन फाउंडर आचार्य शिवजी होलवर जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौणताय भगवान की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरीज टू सिमिल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू सिमिल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू सिमिल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता तथा रूप अध्याय दो गीता का सार श्लोक संख्या 18। मेरे पीछे बोलिए अंतवंत इमे देहां नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयश्च तस्माद्युध्यस्व भारत अंतवंत इमे देहां नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयश्च तस्माद्युध्यस्व भारत अंतवंत इमे देहां नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयश्च तस्माद्युध्यस्व भारत। शब्दार्थ बोलिए अंतवंत नाशवान इमे ये सब देहा भौतिक शरीर नित्यस्य नित्य स्वरूप उक्ताः कहे जाते हैं शरीरिणः देहधारी जीव का अनाशिनः कभी नाश ना होने वाला अप्रमेयस्य न मापा जा सकने योग्य तस्मात् अतः युद्धस्व युद्ध करो भारत हे भरतवंशी। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए अविनाशी अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यम भावी है अतः हे भरतवंशी युद्ध करो। यहाँ धागा लगा कर सब लोग प्रार्थना निकालिए। सब लोग मेरे साथ बोलिए ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन सनकयम् चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादं सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांतं राधाकांते नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास्तादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष सुनवादी पाशात देश तारिणे। श्लोक फिर से निकालिए, इस श्लोक को समझेंगे। भगवान कह रहे हैं अंतवंते में देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः। ये देह जो है सब अंतवंत कहे गए हैं, किसके? जो नित्य है, शरीरी, शरीर के अंदर जो नित्य जीव है उसके ये सब देह कैसे हैं? अंतवंत कहे गए हैं। अविनाशिनो अनाशिनो प्रमेयस्य। जो जीव है नित्य है, अनाशी, अनाशी मतलब नाश रहित, और अप्रमेय है, इसका कोई माप नहीं है, इतना सूक्ष्म है कि मापा नहीं जा सकता है। तस्मात् युध्यस्व भारत, इसलिए हे भरतवंशी तुम युद्ध करो। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या कहते हैं, श्रील प्रभुपाद की। भौतिक शरीर स्वभाव से नाशवान है, ये तत्क्षण नष्ट हो सकता है और 100 वर्ष बाद भी, ये केवल समय की बात है। इसे अनंत काल तक बनाए रखने की कोई संभावना नहीं है, किंतु आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे शत्रु देख भी नहीं सकता, मारना तो दूर रहा। जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है, ये इतना सूक्ष्म है कि कोई इसके मापने की बात सोच भी नहीं सकता, अतः दोनों ही दृष्टि से शोक का कोई कारण नहीं है, क्योंकि जीव जिस रूप में है ना तो उसे मारा जा सकता है, न ही शरीर को कुछ समय तक या स्थायी रूप से बचाया जा सकता है। पूर्ण आत्मा के सूक्ष्म कर्ण अपने कर्म के अनुसार ही ये शरीर धारण करते हैं, अतः धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए। वेदांत सूत्र में जीव को प्रकाश बताया गया है, क्योंकि वह परम प्रकाश का अंश है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सारे ब्रह्मांड का पोषण करता है, उसी प्रकार आत्मा के प्रकाश से इस भौतिक देह का पोषण होता है। जैसे ही आत्मा इस भौतिक शरीर से बाहर निकल जाता है, शरीर सड़ने लगता है, अतः आत्मा ही शरीर का पोषक है। शरीर अपने आप में महत्वहीन है, इसीलिए अर्जुन को उपदेश दिया गया कि वह युद्ध करे और भौतिक शारीरिक कारणों से धर्म की बलि न होने दे। तो यहाँ तक प्रभुपाद जी का तात्पर्य था जो हमने पढ़ा। अब जो मेरा लेख छपा था भगवत दर्शन में, उसको मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। इस श्लोक में भगवान शरीर की अनित्यता का वर्णन कर रहे हैं। पिछले श्लोक में उन्होंने शरीर में स्थित जीवात्मा की नित्यता का वर्णन किया था। जिस प्रकार पिछले श्लोक में हमने चर्चा की थी कि मायावादी लोग जीवात्मा और परमात्मा में अंतर न समझकर भगवान के शब्दों के अर्थ का अनर्थ कर देते हैं, उसी प्रकार इस श्लोक में भी वे उल्टा अर्थ निकालते हैं। तो पिछले श्लोक में भगवान ने कहा है अविनाशी तो तद्विद्धि ये न सर्वम विदम ततम, उसको अविनाशी समझो जिसके द्वारा ये सब व्याप्त है, ये न सर्वम विदम ये सब व्याप्त है। तो जो मायावादी हैं वो क्या अर्थ निकालते हैं है? कि ये पूरा जगत व्याप्त है, उसको अविनाशी समझो। तो मतलब क्या है कि एक आत्मा जो पूरे जगत में व्याप्त है, मतलब हम लोगों की अलग अलग आत्माएं नहीं है, है कि नहीं? जो मायावादी लोग हैं उनको मौका मिलता है, जो पिछला श्लोक में जो भगवान ने कहा है कि ये न सर्वमिदम इदम, एक आत्मा है और वह सब जगह व्याप्त है पूरा जगत, तो फिर अलग अलग आत्माओं का कोई सवाल ही नहीं है, है ना? तो हमने उसमें समझाया था कि इदम का मतलब ये शरीर है, उसको अविनाशी समझो जिसके द्वारा ये पूरा शरीर व्याप्त है इदम, है ना? तो फिर क्या हुआ कि प्रत्येक शरीर में एक एक आत्मा है जी नहीं, और प्रत्येक आत्मा अलग अलग अविनाशी है, ठीक है ना? ये भिन्न आत्माएं हैं, अलग अलग आत्माएं हैं जो अविनाशी हैं, और प्रत्येक आत्मा पूरे शरीर में व्याप्त हो जाती है, हालांकि बहुत छोटी है ना? तो अब ये लेख में पढ़ रहा हूं, तो उसी प्रकार इस श्लोक में भी वे उल्टा अर्थ निकालते हैं। अब इस श्लोक का उल्टा अर्थ क्या निकालते हैं कि इसमें लिखा है अंत्यवंत में देह नित्य उक्ता शरीर न, नित्य जीवदा जीव जीवात्मा के ये सब शरीर अंत्यवंत कहे गए हैं। तो चूंकि भगवान ने जीवात्मा के लिए एक वचन का प्रयोग किया है और शरीरों के लिए बहुवचन का प्रयोग किया है, तो उनको फिर मौका मिल जाता है क्या कि भाई एक ही आत्मा के ये सब शरीर हैं, है ना? तो अलग अलग आत्माएं नहीं है, शरीर अलग अलग हैं लेकिन आत्मा एक है, एक ही आत्मा के सब शरीर अनित्य कहे गए हैं, अंतवंत कहे गए हैं, है ना? तो उनको मौका मिल जाता है। यहां पर भगवान शरीर के लिए बहुवचन का प्रयोग करते हुए कह रहे हैं इमे देहा, अर्थात ये सभी शरीर, परंतु शरीर में स्थित जीवात्मा के लिए एक वचन का प्रयोग करते हुए वे कह रहे हैं शरीरिणः, अर्थात शरीरी या जीवात्मा के। इससे मायावादियों को ये कहने का अवसर मिल जाता है कि एक ही आत्मा के ये सभी शरीर नाशवान हैं। उनके अनुसार एक ही आत्मा सभी शरीरों को धारण कर रहा है, परंतु वास्तविकता तो ये है कि जितने शरीर हैं उनमें से प्रत्येक शरीर में एक एक शरीरी या जीवात्मा है, ठीक है ना? जो वास्तविकता है वो क्या है, जितने शरीर हैं उतने ही अलग अलग शरीरी हैं, जीवात्मा है। इस बात को पुष्ट करने के लिए हम आगे श्लोक संख्या 20 में देख रहे हैं, 20वां श्लोक अभी आने वाला है ना, 20वां श्लोक में देखते हैं कि भगवान शरीर परिवर्तन की तुलना मनुष्य के वस्त्र परिवर्तन से कर रहे हैं। इससे यही बात पुष्ट होती है कि जिस प्रकार कोई व्यक्ति एक समय में वस्त्रों का एक ही परिधान धारण कर सकता है तथा वस्त्रों का एक परिधान छोड़कर फिर अन्य परिधान को धारण करता है, उसी प्रकार जीवात्मा भी एक समय में दो शरीर भी धारण नहीं कर सकता, फिर सभी शरीरों के विषय में क्या कहा जाए। अच्छा माफ करना, तो 22वां नहीं है, 20वां नहीं है, 22वां है। हाँ तो 22वां में भगवान ने कहा है वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहणाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। फिर सभी शरीरों के विषय में क्या कहा जाए, है ना? तो निष्कर्ष यही है कि जीवात्मा एक समय में एक ही शरीर धारण करता है। फिर प्रश्न उठता है कि भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जीवात्मा के ये सभी शरीर नाशवान है, ठीक है ना? फिर तो भगवान यही कहते भाई एक जीवात्मा का जब एक ही शरीर है तो भगवान कहते जीवात्मा का ये शरीर नाशवान कहा गया है ना। भगवान ने बहुवचन का प्रयोग क्यों किया कि भगवान की जीवात्मा की ये सभी शरीर नाशवान कहे गए। उन्हें कहना चाहिए था कि जीवात्मा का ये शरीर नाशवान है। इस प्रश्न का उत्तर यह है कि जब भगवान इमे देहा अर्थात ये सभी शरीर इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं तो भगवान का लक्ष्य वर्तमान में दिखाई देने वाले सभी शरीरों से ना होकर पूर्व काल में प्राप्त हुए सभी शरीरों से हैं। ठीक है ना, क्या समझे है? समझ में आया क्या? कौन बताएगा? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि भगवान इमे देहा अर्थात ये सभी शरीर इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं तो भगवान का लक्ष्य वर्तमान में दिखाई देने वाले सभी शरीरों से ना होकर पूर्व काल में प्राप्त हुए सभी शरीरों से हैं। कि एक जीवात्मा के जितने भी शरीर हो चुके हैं अभी तक वो नाशवान कहे गए हैं, भगवान ये कह रहे हैं। मायावादी नहीं, वास्तविक जो है जो मतलब है वो ये है। अभी समझ नहीं आया किसी को? प्रत्येक जीवात्मा के ये सभी शरीर नाशवान कहे गए हैं। पिछले जन्मों में जितने शरीर प्राप्त हुए हैं उन सब के लिए भगवान कह रहे हैं। ठीक है ना, ये मायावादी नहीं कह रहे हैं, ये हम कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं ये कि सभी शरीर नाशवान कहे गए हैं। यहां पर भगवान का संकेत है कि प्रत्येक शरीर ही अर्थात जीवात्मा को पूर्व काल में अनेक शरीर प्राप्त हो चुके हैं जो क्या है, नाशवान है, जिनका अंत हो चुका है। जिस प्रकार उन शरीरों का अंत हो चुका है उसी प्रकार इस शरीर का भी अंत हो जाएगा। यदि भगवान शरीर के लिए एक वचन का प्रयोग करते हुए कहते इमम देहा अर्थात ये शरीर नाशवान है तो कोई व्यक्ति सोच सकता था कि शायद प्रत्येक जीवात्मा को एक ही शरीर प्राप्त होता है तथा इस शरीर के पूर्व जीवात्मा को कोई शरीर प्राप्त नहीं हुआ था और ना ही इस शरीर के बाद कोई शरीर प्राप्त होगा, है ना। ऐसा भी कई लोग सोचते हैं कि भाई एक ही बार जन्म मिलता है, ना दोबारा जन्म होता है और ना पहले कोई जन्म था, है ना। श्री भगवान ने बहुत सोच विचार कर इस श्लोक में जीवात्मा के लिए इमे देहा अर्थात ये सभी शरीर इन शब्दों का प्रयोग किया है। इसी कारण भगवद गीता समस्त धर्म ग्रंथों में सर्वोच्च पुस्तक मानी जाती है। अन्य धर्म ग्रंथों में इस बात पर कोई प्रकाश नहीं डाला गया है कि प्रत्येक जीवात्मा को पूर्व काल में अनेक शरीर प्राप्त हो चुके हैं। किसी भी धर्म ग्रंथ में ये बात प्रकाशित नहीं होती कि प्रत्येक जीवात्मा को पहले भी कई शरीर प्राप्त हो चुके हैं। कहाँ है, कौन से धर्म में ये बातें बताई गई? परंतु भगवद गीता में ये बात स्पष्ट रूप से बताई गई है तथा हमारे अन्य धर्म ग्रंथों से पता चलता है कि हम सभी जीवात्माएं 84 लाख प्रकार के शरीरों में से कोई ना कोई शरीर प्राप्त करते रहे हैं। अब प्रश्न उठता है कि पूर्व काल में प्राप्त हुए अनेक शरीरों के लिए भगवान इमे देहा अर्थात ये सभी शरीर इन शब्दों का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? इमे देहा ये सभी शरीर तो लगता है कि भाई सामने जो दिखाई दे रहे हैं उनकी बात, जो पहले प्राप्त हुए हैं उनके लिए भगवान क्यों कह रहे हैं ये सभी शरीर? ये प्रश्न उठता है कि नहीं उठता है? नहीं। इमे देहा अर्थात ये सभी शरीर इन शब्दों से तो उन शरीरों की सूचना मिलती है जो वर्तमान में सामने दिखाई दे रहे हैं। इस प्रश्न का उत्तर यह है कि गीता का यह उपदेश श्री कृष्ण मनुष्य के रूप में नहीं दे रहे हैं। क्या समझे? श्री कृष्ण ये उपदेश मनुष्य के रूप में नहीं दे रहे हैं बल्कि वे श्री भगवान के रूप में ये उपदेश दे रहे हैं। श्री भगवान के लिए भूतकाल वर्तमान काल और भविष्य काल में कोई अंतर नहीं है। तो पहले जितने भी शरीर आपको प्राप्त हो चुके हैं भगवान कहते हैं ये सभी शरीर अंत वाले हैं। भगवान के लिए वो जितने शरीर पहले प्राप्त हो चुके हैं तो वो भगवान के लिए कैसे हैं? जैसे कि अभी अभी ही हुए हूं, इस तरह से भगवान बोल रहे हैं। भगवान की दृष्टि में काल बाधा नहीं डालता है, हमारी दृष्टि में काल बाधा डालता है कि नहीं। इसलिए पूर्व काल में जो शरीर हो चुके हैं उनके लिए श्री कृष्ण वर्तमान काल के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। श्री कृष्ण को करोड़ों अरबों वर्ष पूर्व की घटनाएं उसी तरह याद हैं जैसे ये घटनाएं अभी अभी घटी हों। श्री कृष्ण के लिए भूतकाल भी वर्तमान काल के समान है तथा भविष्य काल भी वर्तमान काल के समान है। आगे भी जो कुछ होना है तो कृष्ण कहते हैं कि ये ऐसा हो गया। गीता के चौथे अध्याय के प्रथम श्लोक में भी कहते हैं इमं व्यवस्थते योगम प्रोक्तवान अहमप्ययम्, अर्थात मैंने इस अमर विद्या का उपदेश सूर्य देव को दिया। इस बात को श्री कृष्ण ने इतनी सरलता से बताया कि अर्जुन को लगा कि श्री कृष्ण ने सूर्य देव को इस विद्या का उपदेश अभी कुछ समय पूर्व ही दिया है। अर्जुन को लगा जिस समय श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे थे उस समय श्री कृष्ण की अवस्था लगभग 89 वर्ष की थी तथा अर्जुन की अवस्था भी लगभग उतनी ही थी, बराबर के हैं। तब अर्जुन को अत्यंत आश्चर्य हुआ कि श्री कृष्ण का जन्म 89 वर्ष पूर्व हुआ है तथा सूर्य का जन्म 12 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ है, तो फिर श्री कृष्ण ने यह उपदेश सूर्य देवता को किस प्रकार सुनाया। इसके उत्तर में श्री कृष्ण ने बताया कि उनके अनेक जन्म हो चुके हैं, ये ईश्वर की भाषा है, यह है ईश्वर की भाषा। एकमात्र ईश्वर ही ऐसी भाषा का प्रयोग कर सकता है कि वह अपने पिछले अनेक जन्मों की बातों को इस प्रकार बताता है मानो वे अभी अभी ही घटित हुई हों। श्री कृष्ण इसी प्रकार जीवात्मा के विषय में भी बतला रहे हैं। वे कह रहे हैं कि इस नित्य शरीर अर्थात जीवात्मा के ये देह अंतवंत अर्थात नाशवान कहे गए हैं। आपको तो पता भी नहीं कि पिछले जन्म में आपको कौन सा शरीर प्राप्त हुआ था, है ना, और उसके पिछले भी जन्म में कौन सा शरीर, ऐसे करोड़ों करोड़ों आपको शरीर प्राप्त हो चुके हैं, आपको तो एक भी शरीर का पता नहीं है। और कृष्ण ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि उनके सामने हो ये सब, है ना, पिछले जन्म में क्या शरीर था, उसके पहले क्या था, करोड़ों जन्म के पहले आपको कौन सा शरीर प्राप्त हुआ था, कृष्ण को ये सब क्या है ऐसे सामने की तरह मतलब दिखाई दे रहे हैं, है ना। श्री कृष्ण इसी प्रकार जीवात्मा के विषय में भी बता रहे हैं। वे कह रहे हैं कि इस नित्य शरीर अर्थात जीवात्मा के ये देह अंतवंत अर्थात नाशवान कहे गए हैं। अब हम इस श्लोक में आए हुए शब्द उक्ताहा पर विचार करेंगे। श्लोक में है ना उक्ता, भगवान यहां पर इस बात पर जोर दे रहे हैं कि शरीर की अनित्यता को पहले से ही शास्त्रों साधुओं तथा आचार्यों ने बतलाया है। उक्ता कहे गए मतलब शास्त्र ने कहा, साधु संतों ने कहा है, आचार्यों ने कहा है। हमारा कर्तव्य है कि इन बातों को सदा श्रवण करें तथा स्मरण करें। अगर शास्त्र कहते हैं, साधु कहते हैं, आचार्य कहते हैं किसी बात को, तो हमारा क्या कर्तव्य है, श्रवण करें। हमारा कर्तव्य है कि इन बातों का सदा श्रवण करें तथा स्मरण करें, क्योंकि हम जीव स्वभाव से ही विलक्षण हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि इन बातों का बार बार श्रवण तथा स्मरण करें। यह शरीर नाशवान है, इस बात को हम प्रत्यक्ष भी देखते हैं कि हमारे आसपास के लोग एक एक करके मृत्यु के मुख में जा रहे हैं, परंतु फिर भी हम अपने विषय में सोचते हैं कि मेरी स्थिति अत्यंत विशिष्ट है, मेरा यह शरीर अत्यंत विशिष्ट है। परंतु यहां पर भगवान कह रहे हैं कि जिस प्रकार हमारे अनेक शरीर पूर्व काल में नष्ट हो चुके हैं उसी प्रकार ये शरीर भी नष्ट हो जाएगा। ऐसा पहले से ही कहा जा चुका है। यह अत्यंत आश्चर्य की बात है कि बार बार देखते तथा सुनते हुए भी ये जीव इस बात को भूल जाता है। सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? यही है क्या कि हम बार बार देखते हैं और बार बार सुनते हैं तो भी हम भूल जाते हैं इस बात को। जिस समय पांडवों को 12 वर्ष का वनवास हुआ था उस समय साक्षात यमराज ने यक्ष का रूप धारण करके युधिष्ठिर महाराज की परीक्षा लेने के लिए उनसे अनेक प्रश्न किए। उनमें से एक प्रश्न था, आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर महाराज ने उत्तर दिया, अहन्यहनी भूतानी गच्छन्ति है यमालयम शेषास्थावरमिच्छन्ति किमाश्चर्यं वता परम। अर्थात दिन प्रतिदिन अनेक प्राणी यम लोक की यात्रा कर रहे हैं, देख रहे हैं सब कोई, परंतु जो लोग शेष बचे हैं वे संसार में सदा सदा के लिए जीवित रहने की योजना बनाते रहते हैं। इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है? आधुनिक समाज में ताजमहल, अजंता की गुफा आदि वस्तुओं को आश्चर्य माना जाता है, परंतु यदि गहराई से देखा जाए तो पता चलेगा कि सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि बड़े बड़े शिक्षित लोग भी अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं बनाने में व्यस्त हैं, और उनके सामने ही अनेक लोग मृत्यु के मुख में जाते रहते हैं। इतने शिक्षित लोग भी देखते हुए भी नहीं देखते हैं। ये शिक्षित लोग जो है किताबों की कितनी कितनी बातें याद कर लेते हैं, यहां तक कि पूरी की पूरी किताब भी याद कर लेते हैं, लेकिन ये बात याद नहीं रख पाते हैं क्या? अंत वंत में देह, ये देह अनित्य है, इस बात को याद नहीं रख पाते हैं। जबकि हर समय देखते हैं, हर समय सुनते हैं, समाचार पत्रों में पढ़ते हैं, मृत्यु का समाचार हमेशा समाचार पत्र में आता है। कौन से समाचार पत्र में नहीं आता मृत्यु का समाचार? क्या है कोई समाचार, कोई समाचार पत्र या किसी दिन मृत्यु का समाचार ना आया हो? है कोई ऐसा दिन? हर समाचार पत्र में और प्रतिदिन मृत्यु के समाचार आते हैं। इतने शिक्षित लोग भी देखते हुए भी नहीं देखते हैं, तो सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? ये आश्चर्य। परंतु इस श्लोक में भगवान केवल इतनी ही बात नहीं बतला रहे हैं कि शरीर की मृत्यु निश्चित है, भगवान इस बात से भी अधिक बल किसी दूसरी बात पर दे रहे हैं जिस पर चलने के लिए हमें एक दिशा मिलती है। ये कोई निराशावादी पुस्तक नहीं है भगवद्गीता। भगवद्गीता का सिद्धांत कोई निराशावादी नहीं है। निराशावादी कहते हैं हाँ शरीर की मृत्यु हो जाएगी, खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा, तो ना तो इस जीवन में कोई आशा करो और ना जीवन के बाद कोई आशा करो, खत्म है ना। तो ये भगवद्गीता कोई निराशावादी सिद्धांत नहीं है। यदि कुछ लोग इस बात पर विचार करते हैं कि शरीर की मृत्यु निश्चित है तो वे अपने जीवन के प्रति अत्यंत निराशावादी हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें भगवद्गीता से कोई ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ है। इस कारण वे सदा हताश तथा दुखी रहते हैं। फिर कभी कभी वे एक दूसरी प्रकार की विचारधारा को अपनाते हैं। वो विचारधारा इस प्रकार है, यदि शरीर की मृत्यु निश्चित है तो इस बात की चिंता में समय क्यों खराब किया जाए, अच्छा तो यही है कि इस बात को भूलकर जीवन के जितने दिन शेष बचे हैं उनको पूरी तरह से इंद्रिय तृप्ति में लगाया जाए। उनके पास इससे अधिक ऊंचा और कोई सिद्धांत नहीं है। बहुत ऊंचा सिद्धांत अगर वो निकालते हैं तो क्या है कि ठीक है सोचो नहीं, अब जरूरत नहीं सोचने की कि मरना है। क्या करो, मजा लो, जितना देखो सके मजा लो, इंद्रिय तृप्ति करो। परंतु भगवत गीता में भगवान का उपदेश सिद्धांत की इतनी ऊंचाई से प्रारंभ होता है कि आधुनिक समाज में साहित्य की जितनी लाखों करोड़ों पुस्तकें हैं वे भगवत गीता के सामने क्या है, कूड़े के ढेर के समान है जितनी पुस्तकें हैं। तो वह कौन सी बात है जिस पर भगवान शरीर की अनित्यता से भी अधिक बल दे रहे हैं। वो बात है शरीरी अर्थात जीवात्मा की नित्यता। भगवान ने शरीर के लिए तो केवल एक ही शब्द का प्रयोग किया है, क्या शरीर के लिए एक ही शब्द का प्रयोग किया है श्लोक में? अंतवंत, अंतवंत अर्थात विनाशशील। परंतु शरीरी अर्थात जीवात्मा के लिए भगवान ने तीन शब्दों का प्रयोग किया है, क्या है? एक नित्य है और दूसरा अनाशी और तीसरा अप्रमेय। तीन शब्दों का प्रयोग किया है ना। अब हम जीवात्मा के लिए प्रयोग इन तीन शब्दों पर विचार करेंगे। तो पहला शब्द क्या है इस श्लोक में? जीवात्मा के लिए पहला शब्द क्या है? श्लोक देखो, जीवात्मा के लिए अंतवंत, अंतवंत जीवात्मा के लिए है। आप लोग क्या देखते हो? हाँ, तो इतनी देर से मैं पूछ रहा हूं, आप लोग बताते नहीं। जीवात्मा के लिए पहला शब्द है नित्य। तो नित्य का अर्थ है जो हमेशा बना रहे। ये शरीर अनित्य है, इसका अर्थ है कि शरीर को हम चाहे जितनी अनुकूल परिस्थितियों में रखें परंतु फिर भी ये नष्ट हो जाता है। बहुत से लोग अपने शरीर को सदैव स्वास्थ्य के अनुकूल परिस्थितियों में रखते हैं। वे अपने भोजन को पर्याप्त रूप से पौष्टिक रखते हैं, भोजन ठीक समय पर खाते हैं, सब भोजन उचित मात्रा में ग्रहण करते हैं, भोजन अधिक भी नहीं तथा भोजन कम भी नहीं, अर्थात शरीर को भोजन की जितनी आवश्यकता है उतनी मात्रा में भोजन ग्रहण करते हैं। इसके अतिरिक्त वे ऐसे स्थानों में रहते हैं जहां की हवा और पानी में भी कोई प्रदूषण ना हो। जीवन कितनी अनुकूल स्थितियों के होते हुए भी उनका शरीर क्षीण तथा जर्जर होने लगता है। इसका कारण यही है कि ये शरीर अनित्य है। तो यहां पर भगवान शरीर ही अर्थात जीवात्मा को नित्य कह रहे हैं। इसका अर्थ यही है कि सभी प्रकार की अनुकूल परिस्थितियों के होते भी जिस प्रकार शरीर क्षीण जर्जर तथा नष्ट हो जाता है उस प्रकार शरीर ही अर्थात जीवात्मा नहीं होता। अब दूसरा जीवात्मा के लिए शब्द क्या है देखिए श्लोक में? अनाशी है? अनाशी का अर्थ है जो नष्ट नहीं होता। भगवान ने जीवात्मा के लिए इसके पूर्व नित्य शब्द का प्रयोग किया था। तो कोई व्यक्ति सोच सकता है कि यद्यपि जीवात्मा नित्य है अर्थात जीवन की अनुकूल परिस्थितियों में भी जिस प्रकार शरीर नष्ट हो जाता है उस प्रकार जीवात्मा नष्ट नहीं होता, परंतु यदि जीवन की प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएं तो शायद जीवात्मा नष्ट हो सकता है। ठीक है ना। जीवन की प्रतिकूल परिस्थितियों का अर्थ है कि शरीर को बहुत ज्यादा भोजन दिया जाए या बहुत कम भोजन दिया जाए या भोजन बिल्कुल ही ना दिया जाए। ये सब क्या है? प्रतिकूल परिस्थितियां हैं। या विषैला या प्रदूषित भोजन दिया जाए शरीर के लिए प्रतिकूल है। शरीर को ऐसे स्थानों में रखा जाए जहां की हवा या जल प्रदूषित हो, या शरीर को अत्यधिक गर्मी में या अत्यधिक शीत में रखा जाए तो क्या होगा? शरीर नष्ट हो जाता है। ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में शरीर बहुत ही शीघ्र नष्ट हो जाता है, तो शायद जीवात्मा के भी नष्ट होने की संभावना है। इसलिए इस संदेह को दूर करने के लिए भगवान यहां पर अनाशी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। निष्कर्ष यह है कि जीवन के अनुकूल या प्रतिकूल कैसी ही परिस्थितियां हों परंतु जिस प्रकार शरीर धीरे धीरे या शीघ्र नष्ट हो जाता है उस प्रकार जीवात्मा नष्ट नहीं होता। ठीक है ना। इसी श्लोक में भगवान ने कहा था कि जीवात्मा का विनाश कोई भी नहीं कर सकता। इस संसार में बहुत सी वस्तुएं सामान्य स्थितियों में बहुत मजबूत तथा टिकाऊ होती हैं, परंतु उनमें से कुछ वस्तुओं को यदि पानी में डाल दिया जाता है तो वे गलकर नष्ट हो जाती हैं, जैसे लकड़ी या कागज की बनी हुई वस्तुएं। जैसे कि ये टेबल है, लकड़ी की टेबल है, तो ऐसे तो बहुत टिकाऊ है, लेकिन अगर पानी में डाल दो तो क्या होगा? नष्ट हो जाएगी। और कुछ वस्तुएं ऐसी भी होती हैं जो पानी में डालने पर भी नष्ट नहीं होती, जैसे प्लास्टिक या पीतल आदि धातु की बनी हुई वस्तुएं हैं। परंतु यदि उन्हें आग में डाला जाए तो वे या तो जलकर नष्ट हो जाती हैं या गलकर नष्ट हो जाती हैं। कुछ वस्तुएं तोड़ने फोड़ने या काटने से नष्ट हो जाती हैं, परंतु यहाँ पर भगवान जीवात्मा के लिए अनासी शब्द का प्रयोग करके ये कहना चाहते हैं कि जीवात्मा इन सभी प्रकार की क्रियाओं के द्वारा भी नष्ट नहीं हो सकता। अच्छा, अब जीवात्मा के लिए तीसरा शब्द क्या है? अप्रमेय। अप्रमेय का अर्थ है जिसे मापा ना जा सके। अब हम जानते हैं कि दो प्रकार की वस्तुओं को मापा नहीं जा सकता है। पहला, यदि कोई वस्तु हवा या आकाश के समान व्यापक तथा विशाल हो तो उसे मापा नहीं जा सकता, और दूसरा, यदि कोई वस्तु अत्यंत सूक्ष्म हो तो उसे भी मापा नहीं जा सकता है। जो मायावादी हैं वे शरीर में स्थित जीवात्मा तथा परमात्मा के अंतर को ना समझकर एक ही निराकार आत्मा को सभी शरीरों में स्थित मानते हैं, इसलिए वे अप्रमेय का अर्थ निकालते हैं कि चूंकि आत्मा आकाश के समान निराकार तथा सर्वव्यापी है अतः ऐसे मापा नहीं जा सकता, है कि नहीं? अप्रमेय, जहां अप्रमेय शब्द आया है तो वो क्या कहेंगे कि भाई ये आकाश के समान सब जगह है, इसको नापा नहीं जा सकता है। परंतु श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं ये इतना सूक्ष्म है कि कोई इसके मापने की बात सोच भी नहीं सकता, इतना छोटा है। श्रील प्रभुपाद ने पिछले श्लोक के तात्पर्य में वैदिक मंत्रों का उल्लेख करके ये प्रमाणित किया कि जीवात्मा बाल की नोक के 10,000वें भाग के बराबर सूक्ष्म है। अब प्रश्न ये उठता है कि जब वेदों ने जीवात्मा की माप बतलाई है तो फिर भगवान यहाँ पर जीवात्मा को अप्रमेय क्यों कह रहे हैं? हाँ, अगर वेदों ने बताया है कि बाल की नोक के 10,000वें हिस्से के बराबर है तो मापा तो गया, माप तो लिया है, तो फिर भगवान ने अप्रमेय क्यों कहा? हाँ, तो इस प्रश्न का उत्तर यह है कि यद्यपि वेदों ने जीवात्मा की माप बतलाई है, परंतु यदि कोई व्यक्ति चाहे कि वह किसी प्रयोग के द्वारा इस माप की पुष्टि करे तो यह संभव नहीं है। अप्रमेय इसलिए बताया कि आप अपने प्रयोगों से इसको माप नहीं सकते। कि आप सोचो कि भाई वेदों ने कहा है तो हम इसको पुष्ट करें किसी प्रयोग के द्वारा, तो प्रयोग नहीं कर सकते आप। अब इस श्लोक के अंतिम शब्द हैं तस्मात् युद्धस्य भारत, अर्थात हे भरतवंशी युद्ध करो। भगवान अर्जुन को भारत या भरतवंशी कहकर युद्ध करने की आज्ञा दे रहे हैं। भरत के वंश में उत्पन्न होने के कारण अर्जुन अत्यंत वीर हैं तथा सभी प्रकार के अस्त्रों के ज्ञाता हैं। तो भगवान का ये कहना है कि अर्जुन तुम इस युद्ध में सभी प्रकार के अस्त्रों का प्रयोग करो, तुम्हारे अस्त्रों से योद्धाओं के शरीर ही नष्ट होंगे परंतु किसी भी जीवात्मा का विनाश नहीं होगा। अर्जुन ने गीता 1:31 में कहा था कि मैं सज्जनों की हत्या करने से कोई कल्याण नहीं देखता हूं, तो इसके उत्तर में यहां भगवान कह रहे हैं कि जो अर्जुन के सज्जन हैं उनकी जीवात्माओं की हत्या तो किसी भी प्रकार नहीं हो सकती, परंतु जहां तक कल्याण का प्रश्न है अर्जुन को युद्ध करने से कल्याण की प्राप्ति अवश्य होगी। अर्जुन कह रहे हैं ना, नचाश्रयोनु पश्यामि हत्वा सुजनम महावे, युद्ध में अपने सुजनों की हत्या करने से श्रेय नहीं प्राप्त करूंगा। तो भगवान क्या करें, श्रेय तुम प्राप्त करोगे और सुजनों की हत्या भी नहीं होगी, दोनों बातें गलत हैं। अर्जुन ने जो बातें कही हैं वो दोनों गलत हैं। अर्जुन कहते मुझे कल्याण नहीं प्राप्त होगा सुजनों की हत्या करने से, तो भगवान कहते हैं कि कल्याण भी प्राप्त होगा तुमको और सुजनों की हत्या भी नहीं होगी, और तुम भरतवंशी हो तो सब प्रकार के अस्त्रों के ज्ञाता हो, तो सब प्रकार के अस्त्रों का प्रयोग कर लो। जितने भी यहाँ जीवात्मा है उनमें से किसी की भी तुम हत्या नहीं कर सकते, है ना? हाँ, इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सारे ब्रह्मांड का पोषण करता है उसी प्रकार आत्मा के प्रकाश से इस भौतिक देह का पोषण होता है। जैसे ही आत्मा इस भौतिक देह से बाहर निकल जाता है देह सड़ने लगता है, अतः आत्मा ही देह का पोषक है, शरीर अपने आप में महत्वहीन है। इन बातों से यही निष्कर्ष निकलता है कि हम शरीर की सुख सुविधाओं की अधिक चिंता ना करके शरीर ही अर्थात जीवात्मा की सदगति के लिए श्री कृष्ण का भजन करें। हरे कृष्णा। तो ये लेख मैंने पढ़ के सुनाया। आप किसी का कोई प्रश्न है या मैं प्रश्न करूं? तो सर्वज्ञ प्रभु कह रहे हैं कि आजकल के वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि अगर आत्मा है तो हम क्यों नहीं देख पाते हैं, है ना? तो इसका उत्तर यही है कि जब बिंदु, जो गणित में बिंदु है, उसकी परिभाषा यही है कि उसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई कुछ नहीं होती है और उसका भी वो आत्मा 10,000वें हिस्से के बराबर है, तो फिर कैसे आत्मा को मापा जा सकता है, है ना? फिर आत्मा को हम कैसे समझें? आत्मा की पहचान कैसे हम कर सकते हैं? कौन बताएगा? आत्मा की पहचान चेतना के द्वारा कर सकते हैं, है ना? चेतना जो है ना पूरे शरीर में व्याप्त है। जैसे कि कई बार आकाश में सूर्य नहीं दिखाई पड़ रहा है ना, लेकिन आप कह सकते हैं कि आकाश में सूर्य है। कैसे? प्रकाश प्रकाश होता है। इस समय प्रकाश नहीं है, है ना? इसमें इस समय कोई प्रकाश नहीं है, तो हमें प्रकाश पैदा करना पड़ रहा है बल्बों के द्वारा, है ना? लेकिन बिना बल्बों के प्रकाश होता है दिन के समय, तो आप कह सकते हैं कि सूर्य है, जबकि सूर्य ढका हुआ है। तो उसी प्रकार शरीर में जीवात्मा है, है ना? तो उसकी पहचान होती है चेतना के द्वारा। और कोई प्रश्न किसी का? इनका प्रश्न है कि मायावादी क्या एक ही प्रकार के होते हैं जो शंकराचार्य से जुड़े हुए हैं, या और भी कई होते हैं? शंकराचार्य ही मायावाद के प्रवर्तक हैं। मायावादम असत शास्त्रम प्रच्छन्नम बोधम उच्चते माया मेहता देवी कलम ब्राह्मण मूर्तिना। जो मायावाद, जो गलत सिद्धांत है, प्रच्छन्नम बोधम उच्चते, तो बौद्ध सिद्धांत ही जो है ना ये क्या है, प्रच्छन्न है। जो बौद्ध सिद्धांत है तो वही मायावाद सिद्धांत है। मायावाद को जो है क्या है कि मायावाद शंकराचार्य ने कैसे बनाया, वेदों को भी जो है ना उसमें शामिल कर लिया, वेदों के द्वारा भी पुष्ट कर दिया, तो मायावाद हो गया। जबकि बौद्ध धर्म जो है ये वेदों को प्रमाणिक नहीं मानता है, है ना? तो वही जो ना जो बौद्ध धर्म है उसको ही जो ना मायावाद कहा जाता है, लेकिन उसको वेदों का भी जो ना प्रमाण दे दिया जाता है, तो एक दृष्टि से और ज्यादा खतरनाक है ना। बौद्ध धर्म है भाई, वेदों को स्वीकार नहीं करता, तो उन्होंने अपना मान्य सिद्धांत भी, ये हमारा सिद्धांत है, है ना? तो इतना खतरनाक नहीं है, लेकिन वेदों को भी इसमें घुसेर दिया तो मायावाद है, है ना? तो ये जो है ना भौतिक बुद्धि की उपज है। ये जो मायावाद है ये वास्तव में भौतिक बुद्धि की उपज है। कोई व्यक्ति जो है अपनी भौतिक बुद्धि से अगर विचार करता है तो निष्कर्ष वही है, मायावादी निष्कर्ष ही निकलते हैं, है ना? तो कोई मतलब ये नया सिद्धांत नहीं है, लेकिन इसको जो है ज्यादा महत्व दे दिया शंकराचार्य ने वेदों के प्रमाण से, तो वो जो है ना इसलिए ज्यादा खतरनाक हो जाता है। अपनी भौतिक बुद्धि में जब भी विचार आते हैं तो कोई व्यक्ति शक भी कर सकता है कि नहीं, हो सकता है कि ऐसा सही हो या ना हो, लेकिन शंकराचार्य ने उसको और ज्यादा पुष्ट कर दिया वैदिक साहित्यों के प्रमाण से, तो वो जो है और ज्यादा खतरनाक हो गया, ठीक है ना? और कोई प्रश्न किसी का? इनका प्रश्न है कि बौद्ध लोग यही कहते हैं कि मृत्यु के बाद सब कुछ शून्य हो जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि वो भगवान बुद्ध को नहीं मानते हैं कि अभी भगवान बुद्ध हैं इस रूप में? हाँ, भगवान बुद्ध ने इस बात पर प्रकाश नहीं डाला कि मृत्यु के बाद क्या होता है, उन्होंने निर्वाण की बात बतलाई है केवल। तो एक प्रकार से जो है, तो भगवान बुद्ध जो है जो नास्तिक हैं उनको किसी प्रकार से भी अपने रास्ते में खींचने के लिए इस प्रकार का सिद्धांत दे रहे हैं। और उन्होंने बस एक इसी सिद्धांत की स्थापना की है कि जो परम सत्य है, जो परम ज्ञान है, वो कहाँ से आया है? बुद्ध से आया है, बुद्ध से आया है। तो इस तरह से उन्होंने उनको भ्रमित किया है और वे जो ना इतना ही मानते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ज्यादा समझना चाहता है तो उसको फिर भगवद गीता की शरण लेनी पड़ेगी, क्योंकि भगवान बुद्ध जो है ना उनको इतनी जो है ना समझ नहीं दे रहे हैं कि वे हर बात को समझ पाएंगे। ठीक है, इनका प्रश्न है कि शंकराचार्य ने तो बौद्ध धर्म का खंडन किया है क्योंकि उसमें आत्मा को नहीं मानते हैं, लेकिन फिर शंकराचार्य आत्मा को मानते हैं तो फिर उनको मायावादी क्यों कहते हैं? शंकराचार्य आत्मा को मानते हैं, लेकिन वो कैसे मानते हैं आत्मा को? कि आप जो है अपने को जो इस शरीर के अंदर सीमित समझ रहे हैं, ये आपके ऊपर माया का प्रभाव है। तो जो परमेश्वर है वो माया से प्रभावित होकर के ही अपने को क्या अलग अलग समझ रहा है शरीर में, है ना? और जैसे ही आप उस माया से छूट जाते हैं तो आप महसूस करेंगे कि आप ही अकेले मतलब आत्मा है और कोई नहीं है आत्मा। आप समझे? बहुत गलत सिद्धांत है ये। तो शंकराचार्य का ये कहना है कि भाई ईश्वर भी जो ना अपनी माया से भ्रमित होकर के अपने को जीव समझ रहा है। फिर प्रश्न उठता है कि अगर ईश्वर से बढ़कर के माया है, कि ईश्वर भी अपनी माया के मतलब चक्कर में आ गया, माया से भ्रमित हो रहा है, तो फिर ईश्वर का मतलब ही क्या रहा है? आप समझे ना? मायावादी सिद्धांत जानते क्या होता है कि जैसे आप सपना देखते हैं तो सपने में आप खुद ही होते हो और आप ही देखते हो, क्या अपने को भी देखते हो अलग, और आपके घर वाले हैं और पत्नी है, बच्चे हैं, भाई बहन हैं, माँ बाप हैं, और मकान और सड़क और दुकान और बाजार और दुनिया भर का देखते हो, लेकिन होते क्या है? होता क्या है? आप ही होते हो, आप ही सत्य हो और बाकी सब मिथ्या है। जैसे आप जाग गए तो ना तो मकान है, घर है, आप खुद अकेले हो और कुछ नहीं। आप समझे? तो इसी प्रकार से आप ही केवल सत्य हो और बाकी सब मिथ्या है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जगत को मिथ्या मानते हैं मायावादी। आप समझे ना? मतलब मेरे अलावा और कोई दूसरी आत्मा नहीं है, ये तो जो है ना माया के कारण मैं समझ रहा हूं कि मेरे अलावा भी दूसरी आत्माएं हैं। आप समझे? मुझमें और तुम्हें कोई अंतर नहीं है। तो मध्वाचार्य जी क्या कहते हैं? कह रहे मायावादी भाई, जब मुझमें तुम्हें कोई अंतर नहीं है तो तुम्हारी जेब में जितना पैसा है वो मुझे दे दो। मुझे तुम्हें कोई अंतर नहीं है तो तुम्हारी जेब में जितना पैसा है मुझे दे दो, है कि नहीं? तो बहुत जो है ना, लेकिन बड़े जो है ना गहरी युक्तियों से शंकराचार्य ने ऐसा मतलब शब्दों का जाल बनाया है कि व्यक्ति सोचता है कि अरे बहुत ऊंचा सिद्धांत है। लेकिन ऐसा नहीं है, कोई ऊंचा सिद्धांत नहीं है, केवल एक शब्दों का जाल है ना। ठीक है, धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता के, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के, श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा के, श्री श्री गौण्यताय भगवान के, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान के। 16 फरवरी 1970 को प्रभुपाद ने मायापुर में प्रवचन दिया। उन्होंने कहा कि भारत में ये रोज का अभ्यास था कि हाथ से पिसाई की जाती थी, स्त्रियां ऐसा करती, ये उनका एक अभ्यास होता और इस प्रकार से अपने शरीर को वे स्वस्थ रखती थीं और सुंदर रखती थीं। सवेरे वे हरे कृष्ण का कीर्तन करती और पिसाई करती,
जो कुछ भी उन्हें दिन में आवश्यक होता तो वे ताजा पीसती थीं। और वास्तव में इस व्यायाम के द्वारा वे अपने शरीर को सुंदर बनाती थीं। यशोदा माई ऐसा करती थीं, यहाँ तक कि वे नंद महाराज की महारानी थीं। तो फिर और दूसरी स्त्रियों के बारे में क्या कहा जाए। दूध का मंथन करना और गेहूँ पीसना, ये उनका घर का काम था, पूरा काम। अन्यथा फालतू की बातें गप्पे लड़ाना, खाली दिमाग शैतान का घर। 17 फरवरी 1969 को प्रभुपाद ने लॉस एंजल्स में प्रवचन दिया। उन्होंने कहा कि कन्या जब किसी पति से विवाहित होती है तो उसकी कामना होती है एक पुत्र प्राप्त करने की। अगर वो सोचे कि अब मैं विवाहिता हूँ तो मुझे तुरंत ही पुत्र हो तो ये संभव नहीं है। धैर्य धारण करो, पतिव्रता पत्नी बनो, अपने पति की सेवा करो और तुम्हारा जो प्रेम है वो विकसित हो। और चूंकि आप पति पत्नी हो तो निश्चित है कि आपको पुत्र होगा, परंतु अधीर मत हो। उसी प्रकार से जब आप कृष्ण भावनामृत में होते हैं तो आपकी पूर्णता निश्चित है, परंतु धैर्य धारण करो, निश्चय के साथ आपको ये कार्य अभ्यास करना है। अधीर मत हो। ये जो अधीरता है ये क्यों है? निश्चय के अभाव के कारण। और निश्चय का अभाव क्यों है? बहुत ज़्यादा संभोग करने के कारण। 18 फरवरी 1969 को प्रभुपाद ने उद्धव को पत्र लिखा, भगवान की सृष्टि में पुरुष और स्त्रियां होती हैं, यहाँ तक कि आध्यात्मिक जगत में भी, और इस प्रकार की सृष्टि का एक उद्देश्य है। उद्देश्य ये है कि स्त्रियां और पुरुष एक दूसरे से मिलें, लेकिन हाँ काम वासना के लिए नहीं, बल्कि भगवान का गुणगान करने के लिए। वैकुंठ में स्त्रियां इस संसार की स्त्रियों की तुलना में बहुत बहुत अधिक सुंदर हैं, अपने रूप में, उनकी मुस्कुराहट में और वेशभूषा में। परंतु जो स्त्रियां और पुरुष हैं वो इतने ज़्यादा हरे कृष्ण के कीर्तन से आकर्षित होते हैं कि बहुत ज़्यादा आंतरिक उनका जब संग होता है तो भी उनमें काम वासना पैदा नहीं होती है। 19 फरवरी 1966 को प्रभुपाद ने न्यूयॉर्क में प्रवचन दिया कि अगर हम किसी विशेष औषधि को ग्रहण करना चाहते हैं तो हमें उसकी विशेष जो दिशा निर्देश हैं उनका पालन करना चाहिए, जो दवाई के ऊपर लिखे हैं या फिर जो चिकित्सक ने जिस प्रकार परामर्श दिया है। उसी प्रकार से भगवद्गीता का भी सेवन करना चाहिए, जिस प्रकार से भगवद्गीता के जो वक्ता हैं उन्होंने बताया है। और भगवद्गीता के वक्ता हैं कौन? भगवान श्री कृष्ण। 20 फरवरी 1969 को प्रभुपाद ने राय राम को पत्र लिखा कि एक वृद्ध पिता को कुछ मालिश की आवश्यकता थी, तो जितने बच्चे हैं वो पिता की सेवा करना चाहते थे, तो पिता ने अपने दाहिने और बाएं शरीर के अंगों को विभाजित कर दिया बच्चों के लिए कि वो सेवा करें। लेकिन सेवा के दौरान कुछ आपस में उन बच्चों में झगड़ा हुआ और वे जो है फिर एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने लगे। कैसे? जो विरोधी दल के अंग थे तो वो पिता का ही शरीर था, लेकिन वो एक दूसरे का विरोध करने के लिए पिता के ही शरीर को पीटने लगे। तो इस प्रकार से जो पिता हैं उन्होंने कहा कि तुम लोग मेरे ही शरीर के अंगों को कष्ट पहुंचा रहे हो और इस प्रकार से मैं तो मर रहा हूँ, अगर आपस में कुछ मतभेद हो तो कृपा करके शांतिपूर्वक रहो। 21 फरवरी 1973 को प्रभुपाद ने ऑकलैंड में प्रवचन दिया और कहा कि आत्महत्या अनुचित है, ये प्रकृति के नियम का उल्लंघन है। प्रकृति आपको विशेष शरीर देती है कि जिसमें आपको कुछ दिन निश्चित रूप से रहना होगा, और आत्महत्या का मतलब है कि आप प्रकृति के नियम का उल्लंघन करते हैं और आप समय से पहले शरीर की अवधि को कम करते हैं, इसलिए वो व्यक्ति अपराधी होता है। आत्महत्या यहाँ तक कि सामान्य जो राज्य के नियम हैं उनके अनुसार भी अपराध है, आप आत्महत्या नहीं कर सकते। 22 फरवरी 1976 को प्रभुपाद ने मायापुर में प्रवचन दिया और कहा कि जब तक आप इस भौतिक जगत से अरुचि नहीं अनुभव करते हैं तो ये समझना चाहिए कि आप आध्यात्मिक अनुभूति में प्रविष्ट नहीं हुए हैं, तो ये भक्ति का स्वाद है। जब कोई व्यक्ति भक्ति के राज्य में प्रवेश कर चुका होता है तो ये भौतिक जगत उसको बिल्कुल भी आस्वादनीय नहीं होता है।
Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Ram Ram Hare